ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके प्रदेश में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा है, साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उधर गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ इस मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा निलंबित करने के आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा। भारत ने दीर्घावधि वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। ये फैसला रविवार से लागू होगा। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे और रद्द श्रेणियों में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। इस बीच पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना रद्द करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति के निर्णय के तहत आज अमृतसर में अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट के जरिए और 191 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट गए। इससे पहले कल 28 लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा गया था। 287 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से भारत वापस लौट आए हैं। गृहमंत्री ने पाकिस्तान के साथ हुए 1960 के सिंधु जल समझौते पर नई दिल्ली में बैठक की। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सिंधु जल संधि पर सरकार का ऐतिहासिक निर्णय पूरी तरह न्यायसंगत और राष्ट्रहित में है।
अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी, उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा विशेषण लिया है।
विदेश मंत्रालय ने आज दिल्ली में अमेरिका, इजराइल और स्पेन के राजदूतों को पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इजराइल भारत के साथ है। भारत ने आतंकी हमले के बारे में अन्य देशों को सूचित करने के लिए एक व्यापक कूटनीतिक अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानियों के सीमा पार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पंजाब, जम्मू कश्मीर और देशभर में छापे मारे। अभिकरण ने कल 18 स्थानों पर तलाशी में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। अभिकरण जब्त की गई वस्तुओं की जांच कर रही है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर प्रारंभिक हलफनामा दाखिल कर दिया है। सरकार ने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन वक्फ कानून का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से किए गए हैं। इसके कारण सरकारी परिसंपत्तियों का अतिक्रमण हो रहा था। ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक था कि देश में वक्फ बोर्डों का समुचित प्रशासन और प्रबंधन हो सके और ये पारदर्शिता के साथ काम कर सके। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वेटिकन सिटी में सेंट पीटर बेसिलिका में पुष्पांजलि अर्पित कर पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि दी। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति आज इटली की राजधानी रोम पहुंची। वे वेटिकन सिटी की 2 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक मामले राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, जिसमें दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति शामिल रहेंगे। पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को निधन हो गया था। भारत के ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शेरपा बैठक में भाग लिया। बैठक में बहुपक्षवाद, सतत विकास और अंतर ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर रचनात्मक चर्चा हुई। आईपीएल 2020 क्रिकेट में मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 155 रनों का लक्ष्य रखा है। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने अंतिम रिपोर्ट मिलने तक 17वें ओवर में 5 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में चल रहे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।